आज हम रावल आए हैं। ये श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव स्थान है। श्रीमती राधा रानी यहाँ पर 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुई थी। गोलोक वृंदावन से परव्योम गोलोक वृंदावन से यहाँ पर भौम वृंदावन में प्रकट हुई। इसलिए हम आप एक भजन गाएंगे, श्री राधिका स्तव। आपके पास पुस्तक है, सबके पास है, और ये भजन तो आप सभी जानते हैं शायद। राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते,
राधे जय जय
शगन गोकुल तरुणी मंडल मोहिते, गोकुल तरुणी मंडल मोहिते, राधे जय जय माधव दैते,
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 दामोदर रति वर्धन वेशे हरि निष्कृत वृंदावितिनेशे,
दामोदर राति वर्धन वेशे हरि निष्कृत वृंदावितिनेशे,
दामोदर राति वर्धन वेशे निष्कुट वृंदावितिनेशे, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते,
राधे जय जय माधव दैते,
वृषभानुदाधि नव शशि लेखे ललिता सखि गुण रमित विशाखे, वृषभानुदाधि नव शशि लेखे ललिता सखि गुण रमित विशाखे, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, करुणां कुरु मयि करुण भरीते सनक सनतन वर्णित चरिते करुणाभरीते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दैते 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 हरे कृष्णा ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हम सब प्रतिदिन श्रीमती राधा रानी का नाम लेते हैं हर बार जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो हरे शब्द श्रीमती राधा रानी को संबोधित करता है। भगवान श्री कृष्ण का नाम है हरि और श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में समझाते हैं कि हरि शब्द के दो प्रमुख अर्थ होते हैं। एक है सर्व अमंगल हरे, हरण करने वाले, जो हमारे हृदय से जो भी कुछ अभद्र है, अमंगल है, जो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, ऐसे चीजों का हरण करने वाले श्री कृष्ण, उनका नाम हरि है। लेकिन श्री कृष्ण
हमारे हृदय से केवल कुछ लेते नहीं हैं, कुछ देते भी हैं। अमंगल चीजों का हरण करके कुछ प्रदान भी करते हैं। प्रेम दिया मन हरे, तो कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। और कृष्ण प्रेम इस तरह से प्रदान करते हैं कि वो भक्त का मन हर लेते हैं। यहां दुनिया में हरेक का मन माया से हर लिया गया है, माया ग्रस्त सारे जीव हो गए हैं, माया के चंगुल में फंसे हुए हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण प्रेम हृदय में उदित हो जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण माया हरित मन को हर लेते हैं। इसलिए उनका नाम है हरि। अभी इस संसार में सभी लोग विशेष करके कामदेव के प्रभाव में पड़े हैं। कामदेव का और एक नाम है मदन। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की हरण करने की शक्ति इतनी अधिक है कि वो कामदेव का मन भी हरण कर सकते हैं, कामदेव को भी मोहित कर सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का और एक नाम है मदन मोहन। तो वो मदन मोहन या श्री कृष्ण हमारा सब कुछ हरण कर लेते हैं, यहाँ तक कि वो कामदेव को भी मोहित कर सकते हैं। लेकिन सारी सृष्टि में, भौतिक सृष्टि या आध्यात्मिक सृष्टि, केवल एक व्यक्ति है जो कि इन श्री कृष्ण का, इन हरि का मन हरण करती है, और किसी में वो शक्ति नहीं है। क्योंकि हरि ही वो व्यक्ति हैं जो सबका मन हरण करते हैं, तो हरि का मन हरण करने वाले भला कौन हो सकते हैं। लेकिन हैं ऐसे एक व्यक्ति, और वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। इसलिए श्रीमती राधा रानी का दूसरा नाम है हरा। इसे शिवजी के साथ हमें मिश्रित नहीं करना चाहिए। शिवजी का नाम है हर और श्रीमती राधा रानी है हरा। तो जब हरा को संबोधित किया जाता है तो ये हरे हो जाता है। जैसे संस्कृत भाषा में कोई अगर महिला है अंबिका, तो हम कहते हैं हे अंबिके, हम जल पवित्र करने के लिए कौन सा मंत्र का उच्चारण करते हैं आचमन के समय? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। नर्मदे गंगे यमुने। तो उसी प्रकार से हरा को जब हम संबोधित करते हैं तो हरे हो जाता है। फिर हम हरे कृष्ण कहते हैं। तो हरे कृष्ण मतलब क्या है? राधा कृष्ण। तो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान की शक्ति से प्रार्थना कर रहे हैं, जो कि श्रीमती राधा रानी हैं। तो हर रोज जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो हम श्रीमती राधा रानी का नाम भी लेते हैं कृष्ण के साथ साथ। जिस प्रकार से हम सूरज और सूरज के किरणों को अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार से श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है कि हे कृष्ण, हे कृष्ण की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, हमें सदैव आपके चरण कमलों में आप स्थित रखिए, सदैव आपकी सेवा में स्थित रखिए। ये हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है। तो जब अगली बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, चाहे जप में हो, चाहे कीर्तन में हो, चाहे हमारे मन में हो, हमें इस अर्थ को ध्यान में रखना चाहिए। एक बहुत प्रार्थनात्मक भाव से हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो हरे राम क्यों आता है? फिर राधा रानी का राम से कैसा संबंध है? इसका उत्तर ये है कि राम भी श्री कृष्ण को ही संबोधित करता है। क्योंकि राम मतलब रमण करने वाले, जो रमण करते हैं, रम धातु, संस्कृत से रम धातु जो आता है, उस रम या रमण उससे राम आता है, जो रमण करते हैं। तो राधिका रमण ये है राम, जो राधा रानी या श्रीमती राधिका में रमण करते हैं उनका नाम है राम। इसलिए हरे राम में जो राम शब्द है ये भी श्री कृष्ण को ही संबोधित करता है, ये गौड़ीय वैष्णव आचार्यों का मत है। तो हरे कृष्ण हो या हरे राम हो, ये राधा कृष्ण को ही संबोधित करते हैं। साथ साथ श्रील प्रभुपाद ये भी समझाते हैं कि राम दशरथ नंदन अयोध्या वासी राम को भी संबोधित करता है, और उस समय हरे शब्द सीता देवी को संबोधित करता है। और ये राम शब्द जो है ये बलराम का भी एक नाम है, श्रीमद् भागवत में कई बार बलराम को राम कह के पुकारा गया है, और कभी कभी राम शब्द परशुराम जो कि एक शक्तियावेश अवतार हैं भगवान के, उनका भी एक नाम है ये। परंतु गौड़ीय वैष्णव विशेष करके ये हरे कृष्ण और हरे राम दोनों को राधा कृष्ण ही मानते हैं, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र पूरा ये राधा कृष्ण की उपासना है। तो ऐसा नहीं है कि हम राधा रानी का नाम नहीं लेते हैं, हर रोज लेते हैं, और हमारे मंदिरों में विग्रह के नाम भी ऐसे ही हैं, राधा श्याम सुंदर, राधा गोकुलानंद, राधा दामोदर, राधा मदन मोहन, सबसे पहले श्रीमती राधा रानी, फिर कृष्णा, पहले शक्ति फिर शक्तिमान। तो श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति है, भगवान कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, सारे शक्तियों के उद्गम स्रोत हैं, सारे भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियां भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न होती हैं। भगवान श्री कृष्ण की मुख्यतः दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक शक्ति को कहते हैं उनकी बहिरंगा शक्ति जो भौतिक शक्ति है, जिस शक्ति के द्वारा ये भौतिक सृष्टि का सृजन हुआ है, और दूसरी प्रकार की शक्ति है अंतरंगा शक्ति जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति है जिससे सारे आध्यात्मिक जगत का विकास हुआ है। तो आध्यात्मिक शक्ति के भी तीन भाग विभाग माने जाते हैं, ऐसे शास्त्र में कहा गया है। आध्यात्मिक शक्ति को चित्त शक्ति भी कहते हैं। तो चित्त शक्ति के तीन विभाग हैं, उनमें से एक है संधिनी शक्ति। ये संधिनी शक्ति वो शक्ति है जिसके द्वारा भगवान अपने ही निजी अस्तित्व को बनाए रखते हैं। संधिनी शक्ति इज दैट शक्ति बाय विच द लॉर्ड मेंटेन्स हिज ओन एग्जिस्टेंस, अपने ही अस्तित्व को बनाए रखते हैं। दूसरा है संवित शक्ति। संबित शक्ति वो शक्ति है जिसके द्वारा भगवान अपने आप को जान लेते हैं, और जिसके द्वारा हम सब भी भगवान को जानने के लिए योग्य हो जाते हैं। और तीसरी शक्ति है लादिनी शक्ति। लादिनी शक्ति वो शक्ति है भगवान की जिसके द्वारा भगवान आनंद का अनुभव करते हैं, और जिसके द्वारा हम सब भी भगवान के प्रेम में आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो ये है लादिनी शक्ति। तो यहाँ इस जगत में भी जब कोई व्यक्ति कहता है मैं बहुत सुखी हूँ या कोई विषय भोग करता है, तो वो भी एक लादिनी शक्ति का ही स्वरूप है, परंतु वो एक विकृत स्वरूप है, परवर्टेड फॉर्म। आनंद लादिनी शक्ति के बिना संभव नहीं है, परंतु इस दुनिया में, इस भौतिक सृष्टि में, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण को भूल चुके हैं, इसलिए यही लादिनी शक्ति अपने विकृत रूप में उपस्थित है, और इस विकृत लादिनी शक्ति को भोग कहते हैं, संसार का सुख कहते हैं, परंतु ये सच्चा सुख नहीं है बल्कि केवल दुख का कारण है। अगर सच्चे सुख का या सच्चे आनंद का अनुभव हमें करना है तो हमें आपको श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। तो लादिनी शक्ति की मूर्तिमान स्वरूपिणी है श्रीमती राधा रानी, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लादिनी शक्ति। तो लादिनी शक्ति और श्रीमती राधा रानी में कोई अंतर नहीं है, और यही कारण है कि श्रीमती राधा रानी मात्र एक ही व्यक्ति हैं जो श्री कृष्ण को आनंद प्रदान कर सकती हैं, पूर्ण संतुष्ट कर सकती हैं। अन्य भक्तों से भगवान श्री कृष्ण आनंद अवश्य प्राप्त करते हैं। कोई भी जीव अगर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है शुद्ध भाव से तो अवश्य भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु पूर्ण रूपेण भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने की क्षमता केवल श्रीमती राधा रानी में है। इसलिए श्रीमती राधा रानी का और एक नाम है गोविंदानंदिनी, गोविंद को आनंद प्रदान करने वाली, ये है श्रीमती राधा रानी। जब एक बार श्री कृष्ण रासलीला कर रहे थे गोपियों के साथ और श्रीमती राधा रानी वहां से चली गईं, तो श्री कृष्ण अन्य कोटि कोटि गोपियों के बीच में होते हुए भी असंतुष्ट हुए, उनके हृदय के अंदर एक अपूर्णता रही, क्योंकि श्रीमती राधा रानी वहां पर नहीं थीं। इसलिए सारे अन्य गोपियों को छोड़कर, उस रासलीला के स्थान को छोड़कर, वो श्रीमती राधा रानी के खोज में गए और वो आए एक स्थान में। अगर समय मिले तो हम उस स्थान में जाने का प्रयास करेंगे जिसको इमली तला कहते हैं, और वहां पे जाके वो शोक करने लगे, श्रीमती राधा रानी का स्मरण करने लगे। श्रीमती राधा रानी के इस स्मरण में उनका रंग ही बदल गया। श्री कृष्ण का रंग क्या है? सांवला है, इसलिए उनको श्याम कहते हैं। परंतु जब वो श्रीमती राधा रानी के स्मरण में रहे तो उनका रंग बदल गया और स्वर्ण रंग आ गया, श्रीमती राधा रानी की कांति स्वीकार कर ली उन्होंने। तो ये लीला जो है इमली तला में हुई। कहने का अर्थ ये है कि जब श्रीमती राधा रानी नहीं होती हैं, तो अन्य गोपियां भी भले हों, तो भौतिक सृष्टि की बात तो दूर है, अन्य गोपियां भी भले हों, श्री कृष्ण पूर्ण रूपेण संतुष्ट नहीं होते हैं, परंतु जब श्रीमती राधा रानी वहां पर उपस्थित होती हैं श्री कृष्ण के साथ में, तो श्री कृष्ण पूरी तरह से आनंदित और संतुष्ट होते हैं। तो ये है श्रीमती राधा रानी की शक्ति। इसलिए श्रीमती राधा रानी को मदन मोहन मोहिनी कहते हैं। मदन को मोहित करने वाले व्यक्ति को भी श्रीमती राधा रानी मोहित करती हैं, और ये एकमात्र व्यक्ति है जो ऐसा कर सकती है। तो इसलिए श्री कृष्ण कभी भी श्रीमती राधा रानी का संग छोड़ते नहीं है, और उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी भी श्री कृष्ण में ही आनंद प्राप्त करती है, इसलिए वो भी श्री कृष्ण का संग कभी छोड़ती नहीं है। इसलिए ये एक नित्य जोड़ी है। परव्योम या आध्यात्मिक जगत के गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण नित्य रूप से साथ में रहते हैं, कभी अलग नहीं होते हैं। शक्ति और शक्तिमान का भेद कभी नहीं होता। इसलिए भगवान के अन्य जो विस्तार हैं, जैसे श्री रामचंद्र हैं, नारायण हैं, उनके साथ में भी हम देखते हैं, जैसे कि रामचंद्र के साथ सीता देवी हैं तो हम सीता राम कहते हैं, नारायण के साथ हमेशा लक्ष्मी देवी रहती है इसीलिए हम लक्ष्मी नारायण कहते हैं। तो उसी प्रकार से राधा कृष्ण दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। इसलिए जब श्री कृष्ण अवतीर्ण होते हैं भौतिक जगत में, तो उस समय श्रीमती राधा रानी भी आते हैं, ये स्वाभाविक है। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के लीला में शामिल होने के लिए यहीं इसी स्थान में प्रकट हुए थे। हालांकि कृष्ण और श्रीमती राधा रानी कभी अलग नहीं होती हैं, लेकिन यह भौतिक जगत में इस ब्रज भूमि में लीला करने के लिए ऐसे एक प्रतीत होता है कि मानो वो अलग अलग जन्म लिए हैं अलग स्थानों में और एक समय पे पहली बार मिले हैं, लेकिन ये एक लीला है। ऐसा नहीं कि पहली बार कभी वो मिले, वो तो अनादि काल से साथ में ही हैं। ऐसा कभी समय नहीं था जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण के साथ नहीं थी, परंतु इस भौम वृंदावन में जब ऐसे लीला होती है तो ऐसे प्रतीत होता है कि कृष्ण ने जन्म लिया गोकुल में या मथुरा में, और श्रीमती राधा रानी ने जन्म लिया रावल में, और फिर थोड़ी दिन बाद वो पहली बार मिले। तो ये एक हमारे लिए लीला है, सब भक्तों के आनंद के लिए, भक्तों के आध्यात्मिक मनोरंजन के लिए, ताकि सारे भक्त इसमें आनंद ले सकें कि हाँ श्रीमती राधा रानी और कृष्ण इनका पुनर्मिलन हो गया। तो क्योंकि श्रीमती राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, उनका प्राकट्य भी साधारण नहीं है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म और उनके कर्म दिव्य हैं, और जो इसको तत्वतः जानता है, एवं यो व्यक्ति तत्वतः चत्वादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्चयन्, जो तत्वतः भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनके कर्म के दिव्यता को समझ लेता है उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। तो ठीक उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी के दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को तत्वतः जो व्यक्ति जान लेता है वो भी इस भौतिक जगत से मुक्त होकर श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में पर व्योम गोलोक वृंदावन में आश्रय प्राप्त करेगा। ये हमें निस्संदेह श्रद्धा पूर्वक जान लेना चाहिए। तो श्रीमती राधा रानी का जन्म वास्तव में जन्म नहीं है, भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी और उनके नित्य पार्षद जो गोलोक वृंदावन से अवतीर्ण होते हैं वो जन्म नहीं लेते हम सब की तरह। हम सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार एक भौतिक शरीर को प्राप्त करते हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण और उनके पार्षद उनका तो स्वरूप सदैव आध्यात्मिक ही रहता है, कभी भौतिक चीजों से स्पर्श नहीं करते हैं वो, तो फिर उनका जन्म नहीं है, ये आविर्भाव है, प्राकट्य है। तो श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव या प्राकट्य इसी स्थान में हुआ, और इसके पीछे पुराणों में कई सुंदर कथाएं हैं, अलग अलग कल्पों में अलग अलग तरह से इन कथाओं का वर्णन सुनने में आता है। गर्ग संहिता में ऐसे कहा गया है कि श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से एक साल बड़ी हैं उम्र में, परंतु जीव गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से एक साल छोटी है। तो जो बड़ी होने की लीला है वो हो सकता है किसी दूसरे कल्प में हुआ होगा, परंतु गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी उसी उम्र के हैं, किशोर अवस्था के हैं। आप तो जानते हैं कि मनुष्य आयु के अलग अलग स्तर होते हैं। 5 साल के नीचे के आयु को क्या कहते हैं? कुमार अवस्था या कौमार। 6 से 10 इसको पौगंड अवस्था कहते हैं, और 11 से 14 या 15 समझ लीजिए इसको किशोर अवस्था कहते हैं या कैशोर। उसके बाद युव अवस्था या यौवन शुरू हो जाता है। तो श्री कृष्ण का नित्य स्थान या नित्य अवस्था क्या है गोलोक वृंदावन में? किशोर, नव यौवन, मतलब यौवन युव अवस्था या यौवन से पहले जो अवस्था है कैशोर। कैशोर और नव यौवन एक ही है। तो भगवान श्री कृष्ण नित्य किशोर है, केवल किशोर नहीं नित्य किशोर, सदैव किशोर अवस्था में रहते हैं। कभी भगवान श्री कृष्ण को हम वृद्ध अवस्था में नहीं देखते, सफेद दाढ़ी या कोई छड़ी लेकर चल रहे हैं, ऐसे कभी नहीं देखते। ठीक उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भी केवल किशोरी नहीं नित्य किशोरी है। तो नित्य किशोर और नित्य किशोरी इन दोनों की नित्य जोड़ी है, युगल किशोर। तो श्रीमती राधा रानी की आयु भी उसी प्रकार से 14 वर्ष की है, उधर वो किशोरी की तरह है, जैसे कि श्री कृष्ण भी 15 साल की ही लगते हैं सदैव। फिर भी यहाँ जब वो भौतिक जगत में प्रकट होती हैं, तो ऐसे लगता है कि उनका जन्म हो रहा है, बाल्यावस्था है, बाल्य से पौगंड में जा रही हैं, फिर किशोर अवस्था को प्राप्त करती हैं। ये सारी सब लीलाएं हैं, ये भौम वृंदावन में करती हैं श्रीमती राधा रानी, जैसे श्री कृष्ण भी करते हैं। तो यहाँ पर इसी स्थान में श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई, और इसके पीछे लीला जो आज हम आपको सुनाएंगे वो इस्कॉन में भी प्रचलित है। सारे भक्त इसी लीला को ज्यादातर स्वीकार करते हैं, हालांकि और भी कई अन्य ग्रंथों में लीलाओं का वर्णन आता है। तो कई साल पहले की बात है, सुचंद्र एक नाम के व्यक्ति थे, उनके पत्नी का नाम था कलावती। दोनों ही बहुत शुद्ध भक्त थे भगवान के, और बहुत कड़ी तपस्या कर रहे थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए। 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, और ऐसी तपस्या की कि भोजन के लिए केवल ऐसे पत्तों को वो खाते थे जो पेड़ से गिर जाते थे नीचे, और यही उनका आहार था, और कुछ नहीं खाते थे। 10,000 वर्ष समाप्त होने के बाद ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और पूछा कि आपको क्या चाहिए, क्या वरदान आपको हम प्रदान कर सकते हैं। तो कलावती और सुचंद्र ने कहा कि हम चाहते हैं कि साक्षात लक्ष्मी देवी हमारी पुत्री के रूप में प्रकट हुई, ताकि हम उनसे प्रेम कर सकें, उनकी सेवा कर सकें। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और फिर अगले जन्म में सुचंद्र एक गोप बने, उनका नाम था वृषभानु, और उनकी पत्नी कलावती, उन्होंने भी एक गोपी का जन्म लिया और उनका नाम था कीर्तिदा। वृषभानु महाराज और कीर्तिदा, इनका विवाह होने के बाद ये बरसाना में रहा करते थे। बरसाना आने वाले दिनों में हम जाएंगे तो बरसाना भी श्रीमती राधा रानी का स्थान है, हालांकि जन्म उनका यहाँ पर हुआ रावल में, लेकिन थोड़े सालों के बाद वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी राधा रानी को लेकर बरसाना गए। तो खैर, जब यहाँ वृषभानु महाराज और कीर्तिदा बरसाना में रहा करते थे तो कई सालों तक कोई संतान नहीं हुआ उनको, तो उन्होंने सोचा कि चलो काम्य वन में जाएं, वहां कामेश्वर महादेव की उपासना करें, हो सकता है कामेश्वर महादेव या शिवजी की कृपा से हमें कोई संतान की प्राप्ति हो सके। तो कामेश्वर महादेव से प्रार्थना की उन्होंने, और उसके बाद वो यहाँ पर रावल में आए। उधर वृषभानु महाराज के मित्र नंद महाराज और नंद महाराज की पत्नी यशोदा माता, वो नंदग्राम में रहा करते थे, और उनको भी कई सालों से संतान नहीं हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम गोकुल महावन में जाएं, वहां पे यमुना जी बहती हैं, हो सकता है यमुना जी के कृपा से हमें कोई संतान की प्राप्ति हो सके। थोड़ी ही देर में हम गोकुल महावन भी जाएंगे आज। तो फिर नंद महाराज और यशोदा माता अन्य ब्रजवासियों को लेकर नंदग्राम से गोकुल महावन चले गए, और वृषभानु महाराज जो कि नंद महाराज के मित्र थे, वो नंद महाराज के पास में रहना चाहते थे, इसलिए वो बरसाना छोड़कर यहाँ रावल में आए। बरसाना और नंदग्राम पास पास में है, और रावल और गोकुल भी पास पास में है, इसलिए दोनों ने नंदग्राम और बरसाना छोड़कर गोकुल और रावल में आना ठीक समझा। दोनों के संतान नहीं थे, उधर गोकुल महावन में नंद महाराज और यशोदा माता का एक पुत्र हुआ कृष्ण। इस लीला के बारे में हम गोकुल में जाके श्रवण करेंगे। तो श्री कृष्ण का जन्म वहां पर हुआ और यहाँ पर अभी तक वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी को कोई संतान नहीं हुआ। तो एक दिन हुआ ये कि वृषभानु महाराज जमुना जी में गए स्नान करने के लिए, और जब जल के भीतर प्रवेश किया उन्होंने तो अचानक देखा कि एक बहुत ही तेजस्वी और प्रकाशमान एक बहुत ही अद्भुत कमल का पुष्प जो कि काफी बड़ा है वो जल के भीतर है, जल के ऊपर तैर रहा है। बड़े आश्चर्यचकित होकर वृषभानु महाराज उस कमल पुष्प की ओर गए और भी आश्चर्य उनको हुआ ये देखकर कि इस कमल पुष्प के भीतर एक बहुत ही सुंदर बालिका है, अति सुंदर बच्ची है, उसका स्वर्ण रंग है। और वृषभानु महाराज ने सोचा कि ये क्या अद्भुत दृश्य है, ये क्या चमत्कार है कि जमुना के भीतर एक कमल पुष्प के ऊपर ऐसी सुंदर बच्ची यहाँ पर मुझे प्राप्त हो गई। और उसी क्षण स्वयं ब्रह्मा जी वहाँ पर वृषभानु महाराज के सामने प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने वृषभानु महाराज से कहा कि हे वृषभानु, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पिछले जन्म में आपका नाम सुचंद्र था और आपकी पत्नी का नाम था कलावती, और आपने प्रार्थना की थी तपस्या करने के बाद कि आपको साक्षात लक्ष्मी देवी पुत्र रूप में चाहिए, पुत्री रूप में चाहिए, इसलिए आपकी इच्छा पूर्ण हो गई। अब ये साक्षात लक्ष्मी देवी आपकी पुत्री है, अभी आप इस पुत्री को घर ले जाइए। तो बड़े प्रसन्न होकर वृषभानु महाराज ने इस पुत्री को वो घर ले आए। तो बड़े आनंद का अवसर था, कीर्तिदा माता भी बहुत ही प्रसन्न हो गईं, और यहाँ रावल में अन्य जो पड़ोसी थे उनके रहने वाले सब लोग थे वो भी बड़े प्रसन्न हो गए। परंतु इस प्रसन्नता के बीच में एक शोक का विषय भी निकला, और वो क्या था, बात ये थी कि बच्ची न तो देख रही थी, न सुन रही थी, न बोल रही थी। तो सभी लोग बहुत दुखी हो गए कि बच्ची इतनी सुंदर है, ये सौंदर्य तो बड़ा अद्भुत है, लेकिन ये अंधी है, बहरी है, गूंगी है, अब क्या किया जाए। तो इस प्रकार से थोड़े दिन बीत गए। उधर नारद मुनि पहुंचे नंदग्राम, पहुंचे गोकुल में। गोकुल में श्री कृष्ण का दर्शन के लिए आए, दर्शन किया, नंद महाराज आदि को आशीर्वाद दिया, और फिर नारद मुनि सोचने लगे, आखिर हैं बड़े बुद्धिमान नारद मुनि, भगवान के तो शुद्ध भक्त हैं, पार्षद हैं। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण जब प्रकट हुए हैं तो अवश्य कहीं न कहीं श्रीमती राधा रानी भी प्रकट हुई होंगी, लेकिन कहाँ प्रकट हुई हैं ये नारद मुनि को नहीं मालूम था। तो उन्होंने उपाय सोचा कि उपाय एक ही है, मुझे ब्रज में जितने घर हैं इन सब घरों में जाना चाहिए और हर एक घर में जाके पूछना चाहिए कि आपके यहाँ कोई नवजात बच्चा है क्या। और इस प्रकार से वो ब्रज के हर एक घर में गए, गांव गांव में गए, घर घर में गए, आपके यहाँ कोई नवजात बच्चा है, मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। अब कौन ऐसे गृहस्थ है जो नारद मुनि के द्वारा अपने बच्चे के लिए आशीर्वाद नहीं चाहेगा। तो अगर जितने भी बच्चे थे घर में सबको सामने लाते थे, नारद मुनि आशीर्वाद दीजिए, तो नारद मुनि घर घर में जाकर सब बच्चों को आशीर्वाद देते थे, माता पिता को भी आशीर्वाद देते और आगे चलते। आखिर ऐसे करते करते वो पहुंचे रावल। रावल में यहाँ वृषभानु महाराज थे, तो महाराज के घर में सबसे पहले गए और महाराज से पूछा कि आपके घर में क्या कोई नवजात बच्चा है, मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले महाराज वृषभानु ने श्रीदामा को सामने लाया। श्रीदामा वैसे उनके पुत्र थे और श्रीमती राधा रानी के बड़े भाई। और श्रीदामा सामने आए तो नारद मुनि ने आशीर्वाद दिया श्रीदामा को कि तुम कृष्ण और बलराम के सबसे अच्छे मित्र बनोगे, और वो बने भी। श्रीदामा भी तो भगवान के नित्य पार्षद है, गोचारण लीला में और अन्य क्रीड़ाओं में वो तो हमेशा कृष्ण और बलराम के साथ में रहा करते थे। और फिर नारद मुनि लौट के जा रहे थे, फिर विश्वभानु महाराज ने कहा, अरे मुनिवर, और हिचकिचा के बोल रहे थे कि हाँ और एक मेरी बच्ची है, वो बच्ची को भी आप आशीर्वाद दीजिए, लेकिन दुख इसी बात का है ये बच्ची देख नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है। हम आशा करते हैं कि अगर आप आशीर्वाद दें तो शायद ये बच्ची ठीक हो जाए। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, चलो ले जाओ मुझे, मैं भी बच्ची का दर्शन कर लूं। तो अंदर ले गए वृषभानु महाराज नारद मुनि को। जब नारद मुनि अंदर आए तो देखा कि ये बच्ची तो कोई साधारण बच्ची नहीं है, इतना अद्भुत सौंदर्य, मैं तो सारे ब्रह्मांड में भ्रमण कर चुका हूँ, मैंने लक्ष्मी देवी का दर्शन किया है, मैंने पार्वती देवी का दर्शन किया है, इंद्र देव की पत्नी शची देवी का दर्शन किया है, यहाँ तक कि भगवान के अवतार मोहिनी मूर्ति का भी दर्शन किया है, और ये सब अति सुंदर हैं, लेकिन इस बच्ची जितना सुंदर मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है। और फिर उस समय नारद मुनि ने वृषभानु महाराज से कहा कि आप कृपया कमरे के बाहर जाइए, मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तो वृषभानु महाराज जब बाहर गए तो नारद मुनि ने बच्ची को उठाया, और जैसे ही उठाया वो समझ गए कि जितना भाव भोर हो गए नारद मुनि कि समझ गए कि ये साक्षात श्रीमती राधा रानी है। और उस समय श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में नारद मुनि प्रार्थना अर्पण करने लगे, सुंदर स्तुतियां की, स्तुति की उन्होंने श्रीमती राधा रानी की, और कहा कि आप ही सारे भक्ति की उद्गम है, आप ही भक्ति के स्रोत हैं, आप ही गोविंदानंदिनी हैं, आप ही श्री कृष्ण को पूर्ण रूपेण आनंद प्रदान कर सकती हैं। तो मेरे ऊपर आप ये कृपा कीजिए कि मैं आपके नित्य किशोरी रूप देखना चाहता हूँ, जिस रूप में आप सदैव गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण की सेवा करती हैं, मैं आपके इस रूप को देखना चाहता हूँ। तो उसी क्षण श्रीमती राधा रानी अपने नित्य किशोरी अवस्था में नारद मुनि के सामने प्रकट हो गईं, और साथ साथ उनकी अनेक सखियां भी साथ में थीं, और ये इतना तेज और इतना आनंद नारद मुनि सहन नहीं कर पाए और बेहोश होकर गिर पड़े। और फिर वहां जो सखियां थीं वो यमुना का जल लेकर नारद मुनि के ऊपर छिड़कने लगीं, और नारद मुनि को फिर से होश आया, अपने आप को संभालने का पूर्ण प्रयत्न किया लेकिन संभाल नहीं सके अपने आप को, बहुत ही प्रेमावेश में आ गए थे। उधर समय बीतते जा रहा था और वृषभानु महाराज भी बाहर थे। फिर श्रीमती राधा रानी ने फिर से छोटी बच्ची का रूप धारण कर लिया और वृषभानु महाराज को बुलाया नारद मुनि ने अंदर, और कहा कि हाँ कोई बात नहीं। नारद मुनि ने ऐसे अपने आप का ऐसे बर्ताव किया कि मानो कुछ हुआ ही नहीं है। कहा कि नहीं, आप कर लीजिए ये जो संस्कार है, जनकरण संस्कार है, आप कर लीजिए, कोई बात नहीं, ये बच्ची देख नहीं सकती है, इसकी चिंता मत कीजिए, लेकिन हाँ आप सारे गोप गोपियों को अवश्य निमंत्रण दीजिए इसमें, और विशेष करके गोकुल के जो नंद महाराज उनको अवश्य बुलाइए। तो नारद मुनि वहां से चले गए आशीर्वाद देकर, और नारद मुनि तो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, सीधे रावल से गए गोवर्धन। गोवर्धन में कुसुम सरोवर है, कुसुम सरोवर के पास एक अशोक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे बैठे और इसी दर्शन के ऊपर, इसी दृश्य का जिसका दर्शन उन्होंने किया था उसके ऊपर तीव्रता से ध्यान करने लगे, और करीब करीब बीच रात में 12 बजे पुनः उनको वही दर्शन मिला और पुनः वो बेहोश हो गए और पुनः सखियों ने फिर से जमुना जी का जल छिड़का के उनको पुनः बाहर होश में लाया। और फिर नारद मुनि भाग भोर होकर चले गए वहां से और उस प्रेरणा से उन्होंने नारद भक्ति सूत्र की रचना की। ये ग्रंथ का नाम आपने सुना है ना, नारद भक्ति सूत्र, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। प्रभुपाद जी ने भी इसका अनुवाद आरंभ किया था, पूर्ण नहीं कर पाए। नारद भक्ति सूत्र की रचना फिर नारद मुनि ने की वहां गोवर्धन के पास में। तो उधर वृषभानु महाराज ने घोषणा की कि मेरी पुत्री का जन्म कर्म संस्कार होगा। तो सब गोप गोपियों को ब्रज में सबको निमंत्रण था, नंद महाराज और यशोदा माता को भी निमंत्रण पहुंचा। बड़े खुशी से वो निकल पड़े कृष्ण को साथ में लेकर। कृष्ण भी उस समय बाल्यावस्था में थे, छोटे बच्चे थे। और जैसे ही वो यहाँ पर आए तो श्रीमती राधारानी के कमरे में आए और श्री कृष्ण वहां श्रीमती राधारानी के पलंग के पास पहुंच गए और अपने उस पलंग को पकड़ के उठे और श्रीमती राधारानी के पास में आए। और जैसे ही श्री कृष्ण श्रीमती राधारानी के पास में आए, श्री कृष्ण के शरीर का गंध जो है वो चंदन अगरू ऐसे सारे वस्तुओं के मिश्रण का गंध है, बल्कि ये तो एक उनकी झलक है। श्री कृष्ण के शरीर का दिव्य शरीर का सुगंध ऐसा है कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण के शरीर का गंध सुगंध जो है वो सूंघ लिया। साथ साथ श्री कृष्ण वहां आए तो उनको देखने के लिए श्रीमती राधा रानी ने अपनी आंखें खोल दी। और पहली बार श्रीमती राधा रानी ने आंखें खोली, वो हंसने लगी और सब वृषभानु महाराज की दावी वगैरह बहुत प्रसन्न हो गई। तो श्रीमती राधा रानी बहरी नहीं थी, गूंगी नहीं थी, अंधी नहीं थी, लेकिन केवल श्री कृष्ण के लिए राह देख रही थी। और इस कार्य से श्रीमती राधा रानी ने हमको बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। और वो क्या है, कौन सा उपदेश दिया है इस कार्य से, इस एक कार्य से राधा रानी ने? हमारी आंखें किनके लिए है? केवल कृष्ण को देखने के लिए है। कान किसके लिए है? केवल कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन सुनने के लिए है। नाक किसके लिए है? केवल कृष्ण को अर्पण किए हुए पदार्थों का सुगंध लेने के लिए। इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी ने अपने उदाहरण से दिखलाया है कि हमारी जितने भी इंद्रियां हैं वो केवल श्री कृष्ण की सेवा में उपयोग आने चाहिए, अन्यथा इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर वैसे उस बंदर की तरह बैठना चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर हम श्री कृष्ण के बारे में सुनेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? बकबक ही करेंगे। जो कृष्ण के बारे में नहीं बोलता वो बकबक ही करता है, और क्या होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे एक मेंढक एक कुएं के तट में या एक सरोवर के तट में रह के जोर जोर से आवाज करता है और सोचता है कि मेरी बोली कितनी मधुर है, मैं कितना मीठा गाना गा रहा हूँ। वो सोच रहा है ये मधुर है, लेकिन अन्य लोग तो नहीं सोचते कि मधुर है। लेकिन ऐसे तथा कथित मधुर गान से कौन आकर्षित होता है? पास में रहने वाला सांप आकर्षित होता है, जो कहता है कि हाँ भोजन का समय हो गया, महाप्रसादे गोविंदे कह के आके फिर वो अपना मुंह खोल के उस मेंढक के गान को समाप्त कर लेता है। उसी प्रकार से दुनिया में जो लोग कृष्ण कथा नहीं करते, नहीं सुनते, कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं करते हैं, बक 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 जीवन भर करते रहते हैं, अनेक विषय हैं बक बक करने के लिए करते रहते हैं, दूसरों को भी हैरान करते हैं और खुद भी हैरान हो जाते हैं बक बक से। और अंतिम समय में क्या होता है, ये काल रूपी सांप आ जाता है और हरण करके चले जाता है और सब कुछ समाप्त हो जाता है। फिर पुनर्जन्म, फिर वही बकबक, फिर वही सांप, ऐसे हमारे इतिहास है, सारे जीवों का इतिहास है इस सारे ब्रह्मांड में। तो श्रीमती राधा रानी ने हमें सिखलाया है कि हमें जीना चाहिए तो केवल कृष्ण के लिए, बोलना चाहिए केवल कृष्ण के लिए, सुनना चाहिए केवल कृष्ण के लिए, सब कुछ करना चाहिए केवल श्री कृष्ण के लिए, तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा, तब हमारी इंद्रियां जो है वो वास्तव में इनका उद्देश्य जो है वो सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत खुशियां मनाई गई उस समय, और फिर श्री कृष्ण वहां से वापस चले गए उत्सवों के बाद में, और विश्वभानु महाराज भी बहुत प्रसन्न हुए। और श्रीमती राधारानी का जन्म यहाँ पर हुआ, थोड़ी बड़ी हुई और फिर यहाँ से वापस चले गए बरसाना विश्वभानु महाराज श्रीमती राधारानी को लेकर, क्योंकि तब तक गोकुल से वृंदावन होकर नंदग्राम चले गए थे नंद महाराज और यशोदा माता, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारी लीलाएं चल रही थी ना, बहुत सारे असुर आ रहे थे कृष्ण को मारने के लिए। लेकिन क्या हो रहा था, कृष्ण के हाथ ही असुरों की मृत्यु होती जा रही थी। लेकिन क्योंकि इतने सारे असुर आ रहे थे, जो वरिष्ठ ब्रजवासी थे उन्होंने नंद महाराज को सलाह दिया कि हमें अभी गोकुल में वगैरह रहना नहीं चाहिए, यहाँ पे बहुत खतरा है, तो चलिए हम वृंदावन जाते हैं, और वृंदावन से भी आगे वो नंदग्राम चले गए। तो जब नंद महाराज और यशोदा माता कृष्ण को लेकर गोकुल छोड़कर चले गए वापस नंदग्राम, तो वृषभानु महाराज ने सोचा तो हमें भी यहाँ रावल छोड़ के बरसाना वापस जाना चाहिए, फिर वो भी बरसाना वापस चले गए। आगे वहां गोकुल में क्या लीला हुई, और गोकुल के पास पास और अन्य जगह है, ब्रह्मांड घाट है इत्यादि, हम वहां जब जाएंगे तो उन कथाओं को हम वहां पर सुनेंगे। तो यहां पर आप में से जिन भक्तों ने दर्शन नहीं किया है आप अंदर जा सकते हैं, वहां बड़े भक्ति भाव से श्रीमती राधा रानी की कृपा याचना कीजिए। श्री कृष्ण कभी कभी थोड़ा कठोर हो सकते हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी हमेशा बहुत ही नरम होती है, इसलिए श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने से बहुत फायदा मिलेगा, और उनसे प्रार्थना ये करनी चाहिए कि हमारा हृदय बहुत ही गंदा है, बहुत ही अनर्थ हमारे हृदय में है, इसलिए मैं आपकी और श्री कृष्ण की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो आप तो भक्ति की उद्गम है, इसलिए कृपया मेरे ऊपर एक इस भक्ति के सागर के एक बूंद प्रदान कीजिए, आपकी कृपा प्रदान कीजिए। तो ऐसी प्रार्थना हम श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में उनके जन्म स्थान पर हम करेंगे, तो अवश्य श्रीमती राधा रानी हम पर प्रसन्न होकर हमारी इच्छा को पूर्ण करेंगी। श्रीमती राधा रानी की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, गौर प्रेमानंदे। ये प्रश्न है कि कौन ज्यादा कृपालु है, श्रीमती राधा रानी या नित्यानंद प्रभु, स्पर्धा चलती रहती है कृपा के क्षेत्र में, कृपा देने वालों के क्षेत्र में। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं, गुरु के प्रतीक हैं, इसलिए नित्यानंद प्रभु से हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं जिससे कि हम कृष्ण को जान सकें, और श्रीमती राधा रानी से भी हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो दोनों की कृपा की हमें आवश्यकता है। मेरा भाई के बारे में प्रश्न है कि हाँ हम उनको भक्त मानते हैं, लेकिन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से वो नहीं थे। ठीक है, हाँ जी।
आपने बताया कि विश्वानु राज के कोई संतान नहीं थी राधा रानी
के, बाद में हुए यहाँ आने के बाद श्रीदामा हुए, यहाँ आने के बाद उनको एक लड़का हुआ, लेकिन